भजन संहिता 82। भजन 82 न्यायियों के लिए लिखा गया है। ये एक गंभीर भजन है जिसके द्वारा परमेश्वर न्याय करने वालों को संबोधित करता है। परमेश्वर न्यायियों से कहता है कि वो मनुष्य के न्याय से खुश नहीं है अथवा संतुष्ट नहीं है। भजन 82 पद 1। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। परमेश्वर शब्द एलोहिम से आया है जिसका अनुवाद अनेक ईश्वर है, परंतु इसका अनुवाद न्याय भी होता है। निर्गमन अध्याय 22 के पद 8 से 9 में जब परमेश्वर व्यवस्था में निर्देश दे रहा था कि न्यायियों को कैसे मुकदमों का निर्णय देना है, तब परमेश्वर न्यायियों को ईश्वर कहता है, क्योंकि न्याय के पास मनुष्य के भाग्य पर अधिकार होता है। परमेश्वर न्यायियों को ईश्वर कहकर बुलाता है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वरों के बीच में अर्थात न्यायकर्ताओं के बीच में न्याय करता है। मैं इससे प्रसन्न हूं, मुझे खुशी होगी यदि कुछ न्यायियों का न्याय हो, इसलिए नहीं कि मुझे किसी न्याय से गलत निर्णय मिला है। सौभाग्य से मुझे कभी उनका सामना करना ही नहीं पड़ा। मैं नहीं समझता कि हमारे न्यायालयों से सदा खराई से न्याय हुआ होगा। मैं सोचता हूं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था बदनामी का कारण भी बनी है। वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है और कहता है, भजन 82 पद 2, तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों की पक्ष लेते रहोगे? दूसरे शब्दों में, यदि वो प्रसिद्ध व्यक्ति है, धनी और सामर्थी व्यक्ति है, माफिया का सदस्य है, तो वे गलत तरीके से न्याय करते हैं, चाहे वो दुष्ट व्यक्ति हो। सच्चा न्याय करो। आपको सभी लोगों को एक दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वे गरीब या अमीर हो। आपको किसी मनुष्य के अतीत पर या किसी विशेष बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको उसके अभियोग के आधार पर वैसा ही न्याय करना है जैसा एक साधारण मनुष्य का न्याय आप करते हो, क्योंकि न्यायी टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते हैं। परमेश्वर न्यायियों से कहता है। भजन 82 पद 3। कंगालों और अनाथों का न्याय चुकाओ। आजकल हमारी न्यायिक प्रणाली में जो समस्या है वो वास्तव में पैसा है। यदि आप निर्धन हैं तो आप अच्छा वकील नहीं कर सकते और ना ही अपना प्रभावी प्रतिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु यदि आपके पास पैसा है तो आप कोर्ट केस को लंबा खींच सकते हैं। इस केस में आप कई प्रकार के प्रतिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हो। आप यदि धनी हो तो आप कोर्ट केस में विलंबी करा सकते हैं, नए सिरे से याचिका दायर कर सकते हैं, परंतु ये सच्चा न्याय नहीं है। परमेश्वर न्यायियों से कहता है कि धनवानों के प्रभाव में मत आओ, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। भजन 82 पद 3 से लेकर 6 तक। दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ, वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ बूझते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं, पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर या न्यायाधीश हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। ये संदर्भ निर्गमन अध्याय 22 से है, जहां परमेश्वर ने उन्हें इलोहिम कहा, जिसका अनुवाद न्यायी है। परंतु इब्रानी भाषा में इलोहिम का अर्थ ईश्वर है। यीशु मसीह ने यही यूहन्ना के रचित सुसमाचार में कहा जब फरीसी उस पर पथराव करने पर थे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बीच में बहुत से अच्छे काम किए, तो तुम मुझे किस बात के लिए पत्थर मारते हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे भले कार्यों और शिक्षाओं के लिए नहीं, वरन इसलिए तुम स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहते हो, हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। यीशु ने उनसे कहा, ठीक है, मैंने तो ये भी कहा है कि तुम ईश्वर हो, परंतु जब मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तब तुम मुझे पत्थर मारते हो, क्यों? वो कहता है तुम ईश्वर हो। निर्गमन अध्याय 22 में वो न्यायियों से बात करते हुए भी यही कहता है। वो उन मनुष्यों से बात कर रहा है जिन्हें उसने नियुक्त किया या जो नियुक्त किए जाने वाले थे, जिनके पास किसी मनुष्य के जीवन पर अधिकार था। आप ऐसे ही मनुष्य को ईश्वर का स्थान देते हैं जो आपके जीवन पर अधिकार रखता है, वही आपका ईश्वर है। इसलिए यदि एक मनुष्य न्यायालय में बैठा है और आपका जीवन उसके हाथ में है, तो वो आपका ईश्वर है, आपके भाग्य का निर्धारण करने वाला है। इसलिए मॉर्मोन्स ने इस पद को लेकर एक और सुसमाचार बना लिया। वे कहते हैं, यदि आप एक अच्छे मॉर्मोन हो और आपका विवाह मंदिर में स्थापित हुआ है, और यदि आप व्यभिचार विरोधी कच्छा पहनते हो, और यदि आप मॉर्मोन समाज में निष्ठा रखते हो और विश्वासी बने रहते हो, तो आप और आपकी पत्नी मरने के बाद ईश्वर का पद प्राप्त करेंगे, और आप जगत के किसी एक नक्षत्र में जाकर बच्चे पैदा कर सकोगे, और आप उस नक्षत्र के ईश्वर होंगे। आप अपने बच्चों को बढ़ते और उन्नति करते देखोगे। सब कुछ आपका होगा, आप वहां के ईश्वर होंगे और अपनी संतान की देखभाल करोगे। आपकी और मेरी तरह के लोग जिन्होंने जोसेफ स्मिथ या स्वर्गदूत मॉर्मोनी की शिक्षाओं का पालन नहीं किया, तो वे उनके दूत होंगे। यदि हम अच्छे मनुष्य हुए, तब हमें पूरी तरह बाहर नहीं निकाला जाएगा, परंतु हम दूत बन जाएंगे और अच्छे मॉर्मोन विश्वासियों की सेवा करने को हम वहां होंगे और उनके प्रबंधन में संदेश वाहक का काम करेंगे। मेरा अनुमान है कि यदि आप ईश्वर बन जाएंगे, तो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वातावरण में लोगों की रचना भी कर पाएंगे। मेरे विचार में शनि ग्रह कोई बुरा नक्षत्र नहीं होगा कि वहां के देवता बन जाएं, वहां बैठकर उसके उन रंगीन छल्लों को देखना आकर्षक होगा। कहने का अर्थ ये है कि उनकी शिक्षा के अनुसार हमें ईश्वर का दर्जा मिलेगा जो इसी एक पद पर आधारित है, क्योंकि परमेश्वर ने ये शब्द न्यायियों के लिए काम में लिया है। ब्रिंगहम यंग ने इस विचार को एक कदम पीछे किया। मॉर्मोन्स एक कदम आगे ले गए थे कि वे मरने के बाद किसी ग्रह के देवता बन जाएंगे। ब्रिंगहम यंग एक कदम पीछे हटे। उसके अनुसार आदम अपनी अलौकिक पत्नियों में से एक के साथ पृथ्वी पर आया, जिसका नाम हव्वा था। उन्होंने पृथ्वी पर मानव विकास किया, इसलिए आदम हमारा ईश्वर है और उसी के साथ हमारा संबंध है, क्योंकि उसी ने इस नक्षत्र में संतान उत्पत्ति आरंभ की। यही उसको उसके अतीत में किसी और ग्रह का एक अच्छा मॉर्मोन बनाता है। इसलिए वो अपनी आत्मिक पत्नियों में से एक के साथ यहां आया था। ये ईश्वरत्व में बढ़ने की प्रक्रिया है। ब्रिंगहम यंग इससे एक कदम पीछे हटा। मॉर्मोन इससे प्रसन्न नहीं है। ये उसका एक तार्किक विचार था। यदि तर्कसंगत रूप में आपके पास ईश्वर होने का सामर्थ्य है और आप अपने नक्षत्र में जाओगे, तो हम क्यों सोचते हैं कि यही एकमात्र तरीका है? कोई शक नहीं कि दूसरे नक्षत्र भी है। अतः आदम किसी ग्रह पर एक अच्छा मॉर्मोन था, इस कारण वो पृथ्वी पर आया और अपनी अलौकिक पत्नी हव्वा को भी साथ लाया। उन्होंने सृष्टि आरंभ की और उनकी नजर पृथ्वी पर है और देख रहे हैं। वो हमारा ईश्वर है, केवल उसी के साथ हमें बने रहना है। एक दिन पूरा संसार जानेगा कि आपका उद्धार इसी विश्वास पर निर्भर करता है। ये ब्रिंगहम यंग का विचार है। ये विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। ब्रिंगहम यंग के अनुयायी उसकी बात मानने पर मजबूर थे, क्योंकि वे उसको अपना भविष्यद्वक्ता और नबी मानते थे। वो जो कुछ कहता था वो उसके लिए परमेश्वर के लिखे वचन के तुल्य होता था। इस प्रकार उन्होंने अपने लिए एक गड्ढा खोदा और उसी में गिर गए। जो भी है, परमेश्वर इस पद में न्यायियों को संबोधित करता है, तुम ईश्वर हो, अर्थात तुम न्याय करता हो। भजन 82 पद 7। तो भी तुम मनुष्यों की नाई मरोगे। वे लोग इस पद की गहराई में नहीं गए। परमेश्वर कहता है, मैंने कहा था कि आप ईश्वर हो, तो भी तुम मनुष्यों की नाई मरोगे। भजन 82 पद 7 में आगे लिखा है, और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। आपके पास अनेक अधिकार क्यों न हो, आप चाहे लोगों के जीवन को प्रभावित करते हो, तो भी आप किसी भी मनुष्य की नाई मरोगे। इसलिए भजनकार पुकारता है, भजन 82 पद 8, हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर। सच्चा न्याय तो तब होगा जब परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी का न्याय धार्मिकता के साथ करेगा। भजन 82 पद 8 में आगे लिखा है, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा।